अध्याय 12 भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और भाषा का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। यह विशिष्ट ज्ञान क्या है, हमने इसके पहले भाषा के विभिन्न पक्षों पर सामान्य दृष्टि से विचार किया है, किंतु सामान्य दृष्टि से शास्त्रीय दृष्टि भिन्न हुआ करती है। आगे भाषा पर शास्त्रीय या वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाएगा। भाषा विज्ञान की परिभाषा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाषा के विज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान की यही परिभाषा सर्वत्र देखने को मिलती है। भाषा के स्वरूप की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि विज्ञान किसे कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, पर इसके अतिरिक्त पारिभाषिक रूप में विज्ञान का प्रयोग ज्ञान के उन समस्त क्षेत्रों के लिए होता है जिनके सिद्धांतों और नियमों का परीक्षण नियंत्रित परिस्थितियों यानी प्रयोगशालाओं में पूर्वग्रह मुक्त होकर व्यावहारिक एवं प्रत्यक्ष रूप से किया जा सके। इसके नियम और अपवाद भी सार्वभौम होते हैं। इसी दृष्टि से भौतिक रासायनिक जैविकी आदि को विज्ञान की कोटि में रखा जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का परीक्षण भारत में करे या अमेरिका में, परीक्षण एक ही होगा। हाँ, यदि परिणाम में कोई अंतर दिख पड़ता है तो वह जिन कारणों से होगा वे कारण जहाँ भी होंगे परिणाम को उसी प्रकार प्रभावित करेंगे। उसी प्रकार संसार के किसी भी भाग में लाए गए जल का रासायनिक परीक्षण करें तो दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन ही मिलेगा। विज्ञान का सबसे बड़ा आधार है कार्य कारण भाव की नित्यता, अर्थात कारण विशेष रहने पर कार्य विशेष अवश्य हो। पर आजकल अनेक शास्त्रों को विज्ञान कहने लगे हैं जिन्हें हम उपर्युक्त पारिभाषिक रूप में विज्ञान नहीं मान सकते, जैसे राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान आदि। इन सभी संदर्भों में विज्ञान शब्द का प्रयोग केवल विशिष्ट ज्ञान के लिए हुआ है। इस प्रकार हम पाते हैं कि हिंदी के शब्दावली में एक ओर विज्ञान का प्रयोग पारिभाषिक रूप में किया जा रहा है और दूसरी ओर सामान्य अर्थ में। अब प्रश्न उठता है कि भाषा विज्ञान में विज्ञान का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो भाषा विज्ञान अंग्रेजी के लिंग्विस्टिक्स साइंस या साइंस ऑफ लैंग्वेज का अनुवाद है, इसलिए यह स्पष्ट है कि यहाँ विज्ञान का प्रयोग साइंस के लिए अर्थात उसके पारिभाषिक रूप में हुआ है। आजकल ज्ञान के क्षेत्र को प्रायः तीन भागों में बांटा जाता है, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा समाज विज्ञान और तीसरा मानविकी। इनमें भौतिक विज्ञान का संबंध उन वस्तुओं से है जो मानवकृत नहीं है। समाज विज्ञान मुख्यतः सामाजिक दृष्टि से मनुष्य के आचार व्यवहार या क्रियाकलाप का अध्ययन करता है। मानविकी में वैयक्तिक और सृजनात्मक ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान के ये तीन वर्ग परस्पर निरपेक्ष नहीं हैं, इनमें प्रायः संकीर्णता देखी जाती है। उदाहरणार्थ मनोविज्ञान एक दृष्टि से भौतिक विज्ञान की सीमा को छूता है तो दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान की कारण कि मनुष्य की सृष्टि में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, पर उसके आचार व्यवहार, सोच विचार और मूल्यों का निर्धारण समाज के द्वारा होता है। इसी तरह जहाँ तक नाप जोक और उपकरणों का प्रश्न है, स्थापत्य भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, किंतु सौंदर्य पक्ष के कारण मानविकी के अंतर्गत। भाषा विज्ञान इन तीनों क्षेत्रों की सीमा को छूता है। ध्वनि के संप्रेषण की दृष्टि से उसका संबंध भौतिक विज्ञान से है। भाषा की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखने पर वह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और वैयक्तिक तथा सृजनात्मक साहित्य के माध्यम के रूप में भाषा पर विचार करने की स्थिति में वह मानविकी का प्रमुख अंग है। जैसा पहले कहा गया है, भाषा विज्ञान उस अर्थ में विज्ञान नहीं है जिस अर्थ में गणित या भौतिकी। फिर भी वह विज्ञान इसलिए है कि उसके नियम भी कार्य कारण भाव पर आश्रित हैं। चूंकि उन नियमों के अपवाद भी हैं, इसलिए वह शुद्ध विज्ञान की सीमा में नहीं आता। पर नियम है ही नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। नियम है और उनका प्रयोग भी व्यापक रूप से होता है, इसलिए भाषा विज्ञान न तो दर्शन या मनोविज्ञान के समान अनुभव पर आश्रित शास्त्र है और न गणित के समान शुद्ध विज्ञान। उसकी स्थिति मध्यवर्ती है क्योंकि उसे दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। उसमें नियम और अनुभव दोनों का योग है। भाषा विज्ञान की कतिपय अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, एककालिक एवं अनेककालिक। भाषा विज्ञान काल सापेक्ष होता है, अर्थात भाषा संबंधी प्रश्नों पर विचार दो प्रकार से किया जा सकता है, ऐतिहासिक दृष्टि से एवं वर्णनात्मक दृष्टि से। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर किसी भी भाषा का विकास क्रम अधिक महत्वपूर्ण होता है। विविध काल में इस भाषा का प्रयोग हो रहा है वह उसके पूर्व के समय में किस प्रकार की थी, उसकी ध्वनियों, पदावली एवं वाक्य रचना में कितने एवं क्या परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों का कारण क्या था आदि प्रश्न इस संदर्भ के विचारणीय होते हैं। जैसे आधुनिक हिंदी पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाए तो संस्कृत से प्राकृतिक एवं पाली, फिर अपभ्रंश और फिर खड़ी बोली हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ, इस पर बल देना होगा। एककालिक, इसे अंग्रेजी में सिंक्रोनिक कहते हैं। अध्ययन के अंतर्गत किसी काल विशेष में सामान्यतः समकालीन संदर्भ में भाषा के स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है। जैसे आधुनिक भाषा हिंदी की ध्वनियों का स्वरूप, उसकी पद संरचना एवं वाक्य संरचना आदि का विवेचन एककालिक वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का विषय होगा। काल निरपेक्ष होकर भाषा का अध्ययन संभव नहीं है। भाषा के सर्वांगीण अध्ययन के लिए ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक दोनों दृष्टियों का महत्व है। एक में कालक्रम में भाषा के विकास या परिवर्तन को दिखाना लक्ष्य होता है तो दूसरे में समकालीन संदर्भ में भाषा के स्वरूप को। भाषा शुद्धता, भाषा विज्ञान की दृष्टि में भाषा शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती। यदि कोई प्रयोग उस भाषा को बोलने वाले समुदाय विशेष के द्वारा स्वीकृत है तो वह केवल उसका वर्णन करता है। सही या गलत अथवा शुद्ध या अशुद्ध का मूल्यपरक विवेचन भाषा विज्ञान की परिधि से बाहर का विषय है। व्याकरण शास्त्र के नियमों के समान भाषा विज्ञान के नियम निर्धारक नहीं होते, वे केवल वर्णनात्मक होते हैं। अतः जितने प्रकार के प्रयोग भाषिक समुदाय में स्वीकृत होते हैं वह उन सबका विश्लेषण वर्णन करता है। जैसे हिंदी में ने के प्रयोग को देखें, खड़ी बोली में ने का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, इसलिए उसके अतिरिक्त अन्य वाक्यों में उसका प्रयोग अशुद्ध है। मैंने पढ़ा होता आदि। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में ने का प्रयोग अनुचित है, मैंने खाना है, मैंने जाना है। भाषा विज्ञान इन वाक्यों के विषय में केवल इतना कहेगा कि एक विशेष भाषिक समुदाय में जिनकी मातृभाषा पंजाबी या हरियाणवी है, ने का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। इस तरह भाषा विज्ञान निर्धारणात्मक शास्त्र न होकर विशुद्ध वर्णनात्मक शास्त्र है। भाषिक सिद्धांत, भाषा विज्ञान का अन्यतम वैशिष्ट्य है भाषिक सिद्धांतों की स्थापना। किसी भाषा विशेष का विवरण मात्र उसका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के विवरण अन्यत्र भी उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों का संकलन शब्दकोश में, ध्वनियों का वर्णन व्याकरण ग्रंथ में आदि। किंतु भाषा विज्ञान में इन विवरणों के आधार पर भाषा संबंधी अंतर्निहित प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया जाता है। जैसे हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों से आरंभ होने वाले शब्द तो सामान्य हैं, जैसे कमल, पट, तरल आदि, पर संयुक्ताक्षर से आरंभ होने वाले शब्दों में उष्म वर्ण का प्रयोग पहले होता है और स्पृष्ट का बाद में, जैसे स्पष्ट, स्कंद, स्तर आदि। दो स्पृष्ट वर्णाक्षरों का संयोग शब्द के आरंभ में नहीं हो सकता, जैसे मक, तक, पक आदि। ऐसे शब्द संयोग के बीच या अंत में संभव है, पर आरंभ में नहीं। इस प्रकार भाषा विज्ञान के प्रयोगों के विवरण को आधार पर सिद्धांतों की स्थापना या कार्य एककालिक भाषा विज्ञान में तो होता ही है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में भी होता है। इतना ही नहीं, आधुनिक भाषा विज्ञान में तो भाषा विशेष के सिद्धांतों से आगे बढ़कर भाषा मात्र के सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास भी निरंतर चल रहा है। इस क्षेत्र में कार्य करने वालों का यह प्रयास है कि वे ऐसे सिद्धांत स्थापित कर सकें जो भाषा की सार्वभौम प्रवृत्ति की उद्घाटित करें, और उसके बाद किसी भाषा विशेष का विवरण 19 सिद्धांतों के आधार पर दिया जा सके। इससे भाषा के रहस्य को उद्घाटित करना संभव हो सकेगा। वस्तुनिष्ठता। आधुनिक भाषा विज्ञानी भाषा का विश्लेषण करते समय यथाशक्य वस्तुनिष्ठ रहने की कोशिश करते हैं। किसी भी विज्ञान की सफलता एवं उत्कृष्टता भी इसी पर निर्भर करती है कि वह कितना वस्तुनिष्ठ है। कला सदा व्यक्तिनिष्ठ होती है। कलाकार जिस प्रकार किसी वस्तु को स्वयं देखता है उसी प्रकार प्रस्तुत करता है, अर्थात उसकी प्रस्तुति उसके व्यक्तिगत अनुभव, विचारों और मूल्यों का प्रतिफलन होती है। किंतु वैज्ञानिक अध्ययन में वस्तु की यथावत प्रस्तुति या विवरण ही लक्ष्य होता है। इसीलिए भाषा विज्ञान को विज्ञान कहने में कोई अतिरंजना नहीं, क्योंकि इसमें भाषा का यथास्थिति विवरण करना अंतिम लक्ष्य होता है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान में प्रयोगों को सही या गलत अथवा उचित और अनुचित जैसे मूल्यपरक निर्णयात्मक शब्दों से वर्णित नहीं किया जाता। भाषा विज्ञान का अध्ययन करते समय अध्येता को महत्वपूर्ण सुविधा होती है कि वह सिद्धांतों का परीक्षण तुरंत करने में समर्थ होता है, क्योंकि अध्येता कम से कम एक भाषा को जानता ही है। इतना ही नहीं, भाषिक सिद्धांतों की प्रस्तुति के लिए उसकी अपनी भाषा आधार सामग्री का काम भी करती है। इस प्रकार भाषा के अध्ययन के लिए अन्य विज्ञानों की तरह आधार सामग्री कहीं बाहर से जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अनेक स्रोतों से एकत्र की गई आधार सामग्री में जो विविधता होगी वह केवल एक स्रोत से ली गई सामग्री में नहीं हो सकती। पर यह तथ्य भाषा विज्ञान ही क्यों, सभी प्रकार के विज्ञानों की आधार सामग्री के विषय में सही है। यहाँ केवल इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना मेरा उद्देश्य है कि भाषिक अध्ययन के आधार सामग्री का स्रोत व्यक्ति स्वयं भी हो सकता है। शास्त्र के रूप में भाषा विज्ञान की विशेषताओं को संक्षेप में हम निम्न प्रकार से परिगणित कर सकते हैं। पहला, भाषा विज्ञान में भाषा संबंधी अनुभव सिद्ध विवरण एवं सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, जिनका परीक्षण अन्यत्र भी किया जा सकता है। भाषा विज्ञानी जो हैं उसी का वर्णन करता है, वह क्या होना चाहिए इसकी बात नहीं करता। दूसरा, भाषा विज्ञान में भाषा की संरचना अध्ययन का मुख्य विषय होता है। कुछ भाषा विज्ञानी अर्थ संप्रेषण के संदर्भ में एवं मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों में भी भाषा का अध्ययन करते हैं। तीसरा, किसी भी भाषा के संरचनात्मक वैशिष्ट्य के पीछे छिपे कारणों को उजागर करना भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य होता है। लेकिन इस क्षेत्र में भाषा विज्ञानियों में मतैक्य नहीं है। कुछ सार्वभौम सिद्धांतों की खोज को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और कुछ भाषा विशेष के विवरण को। चौथा, प्रत्येक विज्ञान की भांति भाषा विज्ञान के भी पारिभाषिक शब्दावली है जो वर्ण विषय के यथावत वर्णन में सहायक होती है। आज के भाषा विज्ञान में प्रयुक्त शब्दावली में कुछ परंपरागत शब्द हैं, पर अध्ययन के विकास के साथ बहुत सारे नए शब्दों की रचना भी हुई है। कुछ परंपरागत शब्दों का प्रयोग नए संदर्भों में होने लगा है, इसलिए विषय को भली भांति समझने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। पांचवा, भाषा विज्ञान में भाषा के अध्ययन का लक्ष्य उसके स्वरूप का ज्ञान है, अर्थात भाषा का अध्ययन भाषा के स्वरूप को समझने के लिए, पर उस अध्ययन का व्यावहारिक उपयोग कई संदर्भों में सफलता से किया जा सकता है, जैसे भाषा शिक्षण में अथवा सांस्कृतिक अध्ययन के संदर्भ में, अथवा आज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है मशीन भाषा के विकास में। भाषा विज्ञान के प्रयोजन। भाषा विज्ञान को लेकर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि इसके अध्ययन से क्या लाभ है, तो क्या उत्तर भी एक प्रश्न ही है। पहला, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से क्या लाभ है। कोई इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान या भौतिक विज्ञान पढ़ता है तो किस लाभ के लिए। प्रत्येक दर्शन पढ़ने वाला दार्शनिक नहीं होता और न जीवन में दर्शन से काम लेता है। इतिहास में एमए करने वाला जब मुंसिफ या मजिस्ट्रेट बन जाता है तो इतिहास के ज्ञान से उसे कोई सहायता नहीं मिलती। अर्थशास्त्र पढ़ने वाला का आय व्यय अधिक नियमित हो ऐसा नहीं देखा जाता। भौतिक विज्ञान का प्रत्येक अध्येता आविष्कारों की श्रेणी में नहीं बैठ जाता। फिर भी लोग इन शास्त्रों को इसलिए पढ़ते हैं कि इनसे ज्ञान के क्षितिज का विस्तार होता है। किसी भी शास्त्र की उपयोगिता यही है। मैंने बचपन में बीजगणित पढ़ने में बहुत समय नष्ट किया है, पर उससे परीक्षा के दिनों में आतंकित होने के अलावा आज तक कोई दूसरा काम न ले सका। फिर भी बीजगणित पढ़ना क्या, क्योंकि पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने वालों ने सोच रखा था कि बीजगणित से बौद्धिक विकास होता है, ज्ञान साधना भी होता है, उससे किसी दूसरे साध्य यानी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे रेडियो इंजीनियरिंग जानने वाला रेडियो की गड़बड़ी दूर कर सकता है, किंतु समस्त ज्ञान लौकिक दृष्टि से उपयोगी हो ही या आवश्यक नहीं। ज्ञान का अन्यतम और संभवतः सबसे प्रमुख उपयोग है बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति। प्राचीन युग में अध्ययन की इसी दृष्टि से होता था। पतंजलि ने यही बात ध्यान में रखकर कहा है कि ब्राह्मणे निष्कर्षण षडंगो वेदो अध्ययतो यज्ञश्च। महाभाष्य पश्चपाणी अर्थात ब्राह्मण को बिना किसी कारण के, तात्पर्य की बिना किसी मौलिक लाभ की इच्छा के षडंगो यानी शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष से युक्त वेदों का अध्ययन करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जीविका पर ध्यान केंद्रित हो जाने से सदा यह प्रश्न उठा करता है कि विषय के अध्ययन से क्या लाभ है। दूसरा, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा का सम्यक ज्ञान होता है। मनुष्य जिन वस्तुओं से काम लेता है उनके विषय में जानना चाहता है। जितना काम हम भाषा से लेते हैं उतना शरीर के अतिरिक्त किसी वस्तु से नहीं लेते। फिर भी स्थिति यह है कि न तो शरीर की रचना या क्रिया के संबंध में जानते हैं और न भाषा के संबंध में। शरीर की चिंता चिकित्सक पर छोड़ देते हैं और भाषा की चिंता व्याकरण पर। जिस वस्तु से दिन रात काम लेना हो उसकी थोड़ी जानकारी तो प्रत्येक व्यक्ति को रहनी चाहिए। सदा दूसरों के से सहायता लेना न संभव है न उचित। भाषा विज्ञान बहुत रोचक विषय है, क्योंकि वह ऐसी वस्तु का सांगोपांग परिचय देता है जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध है। भाषा क्या है, उसके अंग क्या हैं, ध्वनियों का उच्चारण कैसा होता है, एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि का भेद क्यों होता है, क से ख का उच्चारण क्यों भिन्न है, एक भाषा की ध्वनियों से दूसरी भाषा की ध्वनियाँ क्यों भिन्न हो जाती हैं, एक ही भाषा की ध्वनियों में विभिन्न कालों में भेद क्यों भेद आ जाता है। आज हम ए ऐ ओ औ री री च छ ज झ अंग श आदि का उच्चारण उसी रूप में नहीं करते जिस रूप में हमारे पूर्वज किया करते थे। यह अंतर और परिवर्तन क्यों हो गया। क का अर्थ कुछ नहीं होता पर कम या कमल का होता है, ऐसा क्यों। एक ही मूल से निष्पन्न भक्ति, भाग और भजन शब्द विभिन्न अर्थों के वाचक कैसे बन गए। शब्द कैसे प्रयोग में आते हैं, उनसे अर्थ का भेद कैसे होता है, किसी शब्द का अर्थ क्यों बदल जाता है। एक हरि शब्द से विष्णु, सूर्य, सिंह, घोड़ा, बंदर, मेढक आदि अनेक अर्थ क्यों हो गए। लड़की आता है या वाक्य क्यों ग्राह्य नहीं है, क्यों लड़की आती है यही कहना चाहिए। न का अर्थ निषेध सभी जानते हैं, कोश में भी उसका अर्थ निषेध ही है, पर मैंने कहा था न, इस वाक्य में वह निषेध के बदले विधि का वाचक हो गया। इसका यह अर्थ कैसे बदल गया। स्थान भेद से एक ही भाषा के अनेक रूप क्यों हो जाते हैं। जैसे कहीं जाता हूँ कहते हैं तो कहीं जात हाओ, कहीं जात है, क्यों कोई भाषा हम नहीं समझते। हमारी भाषा से उस भाषा में क्या भेद है, दोनों में कोई संबंध है या नहीं, है तो क्या। संसार की भाषाएं किसी एक स्रोत से निकली है या अनेक स्रोत से, इन प्रश्नों का समाधान भाषा विज्ञान ही कर सकता है। तीसरा, भाषा विज्ञान से भाषा के अध्ययन में पर्याप्त सहायता मिलती है। भाषा के स्वरूप और समुचित प्रयोग का ज्ञान अब तक पूर्णतः नहीं हो सकता जब तक भाषा के तत्वों का थोड़ा बहुत परिचय न हो, और वह भाषा विज्ञान से ही संभव है। भारत में अध्ययन का आरंभ ही ध्वनि विज्ञान से होता था, इसका प्राचीन पर्याय था शिक्षा। आज जिसे हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं उसे प्राचीन समय में शिक्षा कहते थे। ध्वनि विज्ञान की महत्ता का इसी से अनुमान किया जा सकता है कि उसका वाचक शिक्षा शब्द सामान्य शिक्षण का वाचक बन गया, अर्थात भाषा विज्ञान के बिना हमारे यहाँ शिक्षा का आरंभ ही नहीं हो सकता था। आज भी विदेशों में विदेशी भाषाओं को पढ़ने के लिए ध्वनि विज्ञान की सहायता अनिवार्यतः ली जाती है, क्योंकि उसके अभाव में ध्वनि का शुद्ध उच्चारण संभव नहीं है। चौथा, किसी समाज और संस्कृति के ज्ञान के लिए भी भाषा विज्ञान बहुत उपयोगी है। उससे समाज विशेषण विशेष की भौतिक सभ्यता और मानसिक विकास का पता चलता है। वेदों की भाषा आज की भाषा से किस अंश में भिन्न थी, उस भिन्नता से उस युग के जीवन पर क्या प्रकाश पड़ता है, ये बातें भाषा विज्ञान की सहायता से ही जानी जा सकती हैं। पांचवा, साहित्य के ज्ञान के लिए भी भाषा विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि उससे भाषा के निर्माण पक्ष का परिज्ञान होता है। छठा, भाषा विज्ञान वाक् चिकित्सा का आवश्यक अंग बन गया है। कोई तुतलाता है या हकलाता है तो उसकी अभिव्यंजना बाधित होती है। उसकी तुतलाहट या हकलाहट का क्या कारण है, ध्वनियों के उच्चारण में उससे क्या भूल हो रही है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, आदि प्रश्न भाषा विज्ञान के द्वारा ही समाहित हो सकते हैं। विदेशों में वाक् चिकित्सा का रूप वैसा ही व्यापक हो गया है जैसा शारीरिक चिकित्सा का। सातवां, भाषा विज्ञान से संचार के साधनों को समुन्नत करने के लिए भी सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरणार्थ दूरसंचार यानी टेली कम्युनिकेशन या यांत्रिक अनुवाद के लिए संकेतों का निर्माण या तत्सम संबंधी सिद्धांतों का प्रणयन तभी संभव है जब भाषिक संकेतों से परिचय हो, और भाषिक संकेतों का पूर्ण परिचय भाषा विज्ञान के बिना अकल्पनीय है। इस प्रकार साध्य और साधन दोनों रूपों में भाषा विज्ञान का अध्ययन उपयोगी सिद्ध होता है। वह अपने आप में जहाँ साध्य है वहाँ दूसरे ज्ञानों का साधन भी। भाषा विज्ञान के अंग। भाषा कहने से तात्पर्य चार तत्वों का बोध होता है, ध्वनि, शब्द यानी पद, वाक्य और अर्थ। पहले ध्वनि का उच्चारण होता है, फिर उनके ध्वनियों से एक पद का निर्माण होता है, अनेक पदों से वाक्य संगठित होता है और उससे अर्थ की प्रतीति होती है। ध्वनि में अर्थ तक का क्रम अनवरत चलता रहता है। इनमें प्रत्येक की सीमा इतनी विस्तृत और व्यापक हो जा गई है कि इनके विवेचन के लिए स्वतंत्र शास्त्र विकसित हो गए हैं, जिन्हें क्रमशः ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान कहते हैं। पहला, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि क्या है, कैसे कहाँ से उत्पन्न होती है, उसका कैसे संप्रेषण होता है, एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि का भेद क्यों और कैसे होता है, ध्वनि के उच्चारण में किन अवयवों की सहायता ली जाती है, ध्वनि में तारता या मंदता क्यों आती है, उच्चारण के क्रम में कोई एक ध्वनि दूसरी को किस प्रकार प्रभावित करती है, आदि विषयों का निरूपण ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। दूसरा, पद विज्ञान। शब्द क्या है, शब्द कैसे निष्पन्न होता है, शब्द निष्पत्ति में उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय का क्या अपेक्षित उपयोग है, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि का विभाजन किस आधार पर होता है, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि तत्व क्या हैं, शब्द और पद का अंतर क्या है, आदि बातों का विचार पद विज्ञान के अंतर्गत होता है। तीसरा, वाक्य विज्ञान। पदों का अन्वय कैसे होता है, अन्वय के साधन या आधार क्या हैं, क्यों मैं जाता है नहीं हो सकता, मैं जाता हूँ ही होना चाहिए, वाक्य के कितने भेद हैं, ये वाक्य विज्ञान के विषय हैं। चौथा, अर्थ विज्ञान। अर्थ क्या है, अर्थ क्यों बदल जाता है, एक ही भद्र शब्द से भद्दा और भला दो शब्द विकसित हुए हैं पर दोनों के दो अर्थ हैं, वत्स से बच्चा शब्द भी निकला है और बच्चा भी, पर एक का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है और दूसरे का पशु के लिए, वधु से विकसित बहु शब्द का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से सर्वथा उचित है, किंतु गर्भिणी से विकसित गाभिन शब्द का प्रयोग किसी नारी के लिए नहीं हो सकता, पशु के लिए ही हो सकता है। हिंदी में राग शब्द का अर्थ प्रेम होता है, किंतु बंगला में राग से क्रोध का बोध होता है। अर्थ संबंधी ये परिवर्तन क्यों कैसे हो जाते हैं यह बताना अर्थ विज्ञान का काम है। इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान में दो और विषयों का समावेश हो गया है और वे हैं कोश विज्ञान तथा भाषिक भूगोल। पांचवा, कोश विज्ञान। कोश निर्माण की क्या प्रक्रिया है, शब्द की उत्पत्ति क्या है, शब्द के अर्थों का निर्धारण कैसे होता है, शब्दों में कोश के किस क्रम में रखना चाहिए, ये बातें भाषा विज्ञान से ही संबद्ध है। इसलिए कोश विज्ञान भाषा विज्ञान का ही अंग माना जाता है। व्युत्पत्ति का विचार अलग से भी हो सकता है, जिसके लिए हमारे यहाँ निरुक्तिक शब्द का प्रयोग होता है था और अंग्रेजी में एमिटोलॉजी का होता है। आज निरुक्त भी कोश विज्ञान के अंतर्गत है। छठा, भाषिक भूगोल। भाषिक भूगोल भाषा विज्ञान के क्षेत्र विस्तार की एक नई दिशा है, जिससे भाषा संबंधी सीमाओं का विचार और निर्धारण किया जाता है। कोई भाषा कहाँ तक बोली जाती है, उसके व्यवहारिक रूप क्या है एवं कहाँ प्रयुक्त होती हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा की सीमाएं जब मिलती हैं तो वे कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, सीमा प्रदेश की भाषा को किस प्रकार से अंतर्गत माना जाए, आदि प्रश्न भाषिक भूगोल के द्वारा निर्णित होते हैं। भाषा विज्ञान की शाखाएं। भाषा विज्ञान की तीन शाखाएं हैं, पहला वर्णनात्मक, दूसरा ऐतिहासिक और तीसरा तुलनात्मक। पहला, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। किसी भाषा के काल विशेष के स्वरूप का अध्ययन और विश्लेषण पर कुछ नियमों का निर्धारण करना वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसा वर्णनात्मक भाषा नाम से ही स्पष्ट है, इसमें भाषा का वर्णन या विश्लेषण रहता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को ही दूसरे शब्द में व्याकरण कहते हैं। इस शाखा के संबंध में इतना ध्यान में रखना चाहिए कि यह किसी भाषा के काल विशेष से ही संबद्ध होती है। हम ध्वनि का वर्णन करें या पद का या वाक्य का, किंतु ये सारे तत्व किसी एक काल के ही होंगे। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का लक्ष्य भाषा के विकास को दिखाना नहीं होता और न किसी अन्य भाषा से उसकी तुलना करना होता है। इसलिए द सोसुर ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को स्थित्यात्मक कहा है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण पाणिनीय व्याकरण है। पाणिनी की विश्लेषणात्मक क्षमता पर विदेशी मुग्ध रह गए हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि भाषा के वर्णनात्मक अध्ययन का इससे उत्कृष्ट उदाहरण संसार के किसी इतिहास में अलभ्य है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में वर्णनात्मक प्रणाली का रूप बहुत प्रमुख हो गया है और वह स्वतंत्र विज्ञान के रूप में ग्रहित होने लगा है। इस प्रणाली की अनुगामी भाषा विज्ञान के अध्ययन में किसी दूसरे शास्त्र की सहायता लेना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि अर्थ विज्ञान को भी उन्होंने अपने अध्ययन की सीमा से बहिष्कृत कर रखा है। उनका लक्ष्य केवल भाषा के उच्चरित रूप का अध्ययन करना है। उनके अनुसार अर्थ दूसरे शास्त्रों का प्रतिपाद्य है, भाषा विज्ञान को केवल भाषा के उच्चरित रूप पर ही विचार करना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह दृष्टि बड़ी ही एकांगी है। यदि अर्थ निरपेक्ष व्याकरण ही भाषा विज्ञान का विषय है, तो फिर मनुष्य की भाषा और पशु की भाषा में अंतर क्या रहा। ध्वनि वाला अंश तो उभयनिष्ठ है, यदि ध्वनि मनुष्य की वैसी पशु की। मनुष्य की ध्वनि की विशिष्टता यही है कि उससे अर्थवत्ता का योग रहता है और जो पशु की ध्वनि में नहीं रहता। अर्थ वाला अंश हटा देने पर मनुष्य और पशु की भाषा का प्रमुख भेद तिरोहित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अर्थ को छोड़ देने पर भाषा के प्रयोग का उद्देश्य क्या रह जाएगा। हमने पहले देखा है कि वैयक्तिक या सामाजिक रूप में भाषा सार्थक संकेत है। उसका जब भी प्रयोग होता है तो अर्थ की प्रतीति के लिए। उसके अभाव में ध्वनियाँ निरर्थक हो जाएंगी और निरर्थक ध्वनियों के अध्ययन का प्रयोजन महत्वशून्य होगा। यह एक प्रकार से भाषा संबंधी देहवादी दृष्टिकोण है, जिसमें अर्थ तत्व जो भाषा का आत्मतत्व है उपेक्षित हो जा गया है। संभवतः अमेरिका की भौतिकवादी या देहवादी सभ्यता का यह प्रभाव है। एक समय काव्यशास्त्र में भी देहवादी संप्रदाय चल रहे थे। अलंकारवादियों या रीतिवादियों ने काव्य के बाह्य रूप पर ध्यान दिया और उसमें आत्मतत्व की चिंता नहीं की। बाद के आलोचकों को इस भूल का परिमार्जन करना पड़ा। ठीक वही स्थिति आज भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उत्पन्न हो गई है। भाषा विज्ञान की सीमा में अर्थविज्ञान का बहिष्कार वैज्ञानिक दृष्टि से न तो वांछनीय है, न संगत, न उससे भाषा का अध्ययन पूर्ण हो सकता है। सार्थकता ही मानव भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। उसे छोड़ना दृष्टि विभ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक बात और, भाषा के दो पक्ष हैं, ध्वनन और श्रवण। ध्वनन भाषा का केवल आधा भाग है। उसकी पूर्णता के लिए श्रवण उतना ही आवश्यक है जितना ध्वनन। सच तो यह है कि श्रवण के अभाव में ध्वनन का उपयोग समाप्त प्राय हो जाता है। ऐसी स्थिति में भाषा के अध्ययन को केवल ध्वनन तक सीमित रखना उसका अपूर्ण अध्ययन ही माना जाएगा। इसे श्रवण कहते हैं। वह भाषा का अर्थ सापेक्ष अंश है। श्रवण तब तक संभव नहीं है या संभव होने पर ही निरुपयोगी है जब तक उससे अर्थबोध नहीं होता। भाषा का प्रयोग ही किस काम का यदि सुनने वाला उससे कुछ समझ नहीं सके। इस दृष्टि से भी भाषा के अर्थ पक्ष की उपेक्षा उचित नहीं जस्ती। दूसरा, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में किसी भाषा के काल विशेष के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रतिकूल ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में एक ही भाषा के विभिन्न कालों के स्वरूप का अध्ययन होता है। किसी भाषा के पुराने रूपों से नए रूपों का विकास किस प्रकार हुआ यह दिखाना इस प्रणाली का कार्य है। इसलिए द सोसुर ने ऐतिहासिक प्रणाली को गत्यात्मक या विकासात्मक प्रणाली कहा है। उदाहरणार्थ, वैदिक युग से लेकर संस्कृत प्राकृतिक अवरण से होते हुए आधुनिक भाषाओं का ध्वनि, पद या अर्थ की दृष्टि से कैसे विकास हुआ है यह दिखाना इस प्रणाली के अंतर्गत आएगा। उस विकास के क्या कारण थे, उन कारणों के क्या परिणाम हुए इत्यादि बातें भी इस प्रणाली की सीमा में आती हैं। भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में वर्णनात्मक अध्ययन अनायास आ जाता है, क्योंकि विकास दिखाते समय भी काल विशेष की स्थिति को दिखाना आवश्यक होता है। भाषा सिद्धांत प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है, किंतु वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि उसे ग्रहण करना असंभव है। वह जब कालांतर में पूंजीभूत हो जाता है तभी अनुभव का विषय बनता है। इसलिए विकास के भी अनेक सोपान हैं और उन सोपानों की चर्चा ही ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत की जाती है। तीसरा, तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तुलनात्मक प्रणाली में वर्णनात्मक या ऐतिहासिक प्रणालियों का अंतर्भाव हो जाता है। जहाँ वर्णनात्मक या ऐतिहासिक अध्ययन से किसी एक भाषा को आधार बनाया जाता है, वहाँ तुलनात्मक अध्ययन में अनेक भाषाओं को अध्ययन का आधार बनाया जाता है। बिना अनेक की तुलना में हो ही नहीं सकती। तुलना के लिए दो या दो से अधिक भाषाओं के काल विशेष के स्वरूपों को लिया जाता है, स्वभावतः उसमें वर्णनात्मक अंश आ जाता है। यदि काल विशेष तक सीमित न रहकर भिन्न कालों के स्वरूपों को अध्ययन का विषय बनाया गया है और उनकी परस्पर तुलना ही की गई तो वह ऐतिहासिक प्रणाली हो जाएगी। इसलिए वर्णनात्मक और ऐतिहासिक प्रणालियों के समन्वय से तुलनात्मक प्रणाली संभव हो पाती है। वस्तुतः भाषा विज्ञान का जन्म ही तुलनात्मक प्रणाली से हुआ। 18वीं शताब्दी में संस्कृत, ग्रीक और लातिन की तुलना के द्वारा यह बात सिद्ध हुई कि ये तीनों भाषाएं एक परिवार की हैं और उनका साम्य उसी भाषा का परिणाम है। इसलिए काफ़ी समय तक भाषा विज्ञान को सदा तुलनात्मक भाषा विज्ञान यानी कंपेरेटिव फिलोलॉजी ही कहा जाता था। अब तुलनात्मक शब्द हटा दिया गया है, क्योंकि बिना तुलना के भी भाषा विज्ञान की स्थिति संभव है। जैसा ऊपर कहा गया है, वर्णनात्मक या ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में तुलना की आवश्यकता नहीं होती। यूँ तुलना भाषा के किसी तत्व, ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ को लेकर हो सकती है। आज अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक्स और फिलोलॉजी दो शब्द चल रहे हैं। दोनों के अर्थ में अंतर है। लिंग्विस्टिक्स मुख्यतः भाषा के उच्चरित रूप से संबद्ध है, साथ ही उसमें भाषा का अध्ययन साध्य रूप में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा का अध्ययन किसी दूसरे लक्ष्य के लिए नहीं, स्वयं भाषा की विशेषताओं के उद्घाटन और विवेचन के लिए किया जाता है। इसके विपरीत फिलोलॉजी साहित्यिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व के विभिन्न लेखनों से संबद्ध है। उदाहरण के लिए अशोक के अभिलेख को लीजिए। उन अभिलेखों की लिपि या भाषा के अध्ययन से इतिहास के निर्माण में जो सहायता मिलती है उसका निरूपण फिलोलॉजी के अंतर्गत आएगा। किंतु वैदिक युग में कितनी ध्वनियों का प्रयोग होता था वह लिंग्विस्टिक्स बताएगा। भाषिक इतिहास के आलोक में प्राचीन ग्रंथों, पांडुलिपियों आदि का अध्ययन और उनके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की व्याख्या फिलोलॉजी का उद्देश्य है। एक प्रकार से फिलोलॉजी भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स और मानविकी ह्यूमैनिटीज के बीच की संयोजक कड़ी है। और भी स्पष्टता से कहें तो यह कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स में भाषा के उच्चरित रूप का अध्ययन होता है और फिलोलॉजी में इसके लिखित रूप का।